इस कार्यक्रम के सभी पात्र उनके नाम स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं तथा किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति घटना या स्थान से इनकी समानता एक संयोग मात्र है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति धर्म या समुदाय को आहत करने का नहीं है। भूत प्रेत और किसी भी अंधविश्वास को हम चैनल या कंपनी दावा नहीं करते और ना ही बढ़ावा देते हैं।
कहानी रोगी गाना पर कृष्ण काम के साथ
आगे मैं कृष्णकांत और आप सुन रहे हैं कहानी रोकी। केविन की दुनिया को नजदीक से अब तो आप जानने ही लगे होंगे, पर क्या उस एहसास को जान पाए हैं जिसे खौफ कहते हैं? क्या कभी उस खौफ को जानने की कोशिश की है आपने, जिससे अपना ध्यान हटाने की आप बेतहाशा कोशिश करते हैं? क्या है कोई ऐसा एहसास जो जिंदा और मुर्दा का फर्क खत्म सा करने लगे? कभी तो क्या होगा कुछ ऐसा एहसास कि आप जिसे बहुत चाहते हैं, जब वो इस दुनिया को छोड़ जाता है उसके बाद भी उसका एहसास आपको अपने करीब शायद महसूस होता है। केविन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, पर यहां केविन एक ऐसी उलझन में था जिसका जवाब उसे ही तलाशना था। केविन डॉक्टर गौतम से मिलने के बाद उस सिटी हॉस्पिटल में जाने को तैयार है जहां के मुर्दा घर से आजकल मर्दों की खिलखिलाहट बढ़ती सी जा रही है। केविन सिटी हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था। वहां पे सबसे पहले उसने डॉक्टर्स और बाकी जरूरी लोगों से मुलाकात की। सभी से उस हॉस्पिटल में हो रही घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश की, पर कोई भी हॉस्पिटल की बदनामी के डर से उसे वो सच बताने को तैयार नहीं था। जिसकी तलाश केविन को यहां तक ले आई थी। केविन को जब ढंग के जवाब नहीं मिल रहे थे तो उसने वहां पर रुके हुए मरीजों से कुछ जानने की कोशिश की, पर अभी तक उसे वो जानकारी नहीं मिली थी। तभी उसकी नजर एक सफाई करने वाले पे पड़ी जो बड़ी देर से केविन पे नजरें जमाए हुए था। फिर केविन उसके पास पहुंचा और बोला,
काफी देर से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूं, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मैं जानता हूं। बताओ आखिर क्या जानते हो तुम?
नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। जब बड़े साहब लोग कुछ नहीं जानते तो मैं कैसे कुछ जान जाऊंगा साहब? मेरी बात का विश्वास कीजिए।
घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा नाम क्या है?
हरिया नाम है साहब, मैं यहाँ सफाई करता हूँ।
देखो हरिया, मैं यहाँ पे मदद करने की नीयत से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो राज पता हो जो मुझे इस हॉस्पिटल के मुर्दा घर के बारे में पता होना चाहिए। शायद तभी मैं कुछ लोगों को बचा पाऊंगा। ये जो तुम्हारे साहब लोग हैं, ये तो इज्जत बचाते रहते हैं और दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं। सोच लो एक बार, वरना मुझे यहां से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा।
रुकिए साहब, रुकिए, मैं आपको सब बताता हूं।
हाँ हरिया, अब बताओ क्या है इस हॉस्पिटल के मुर्दाघर की कहानी?
साहब, सुबह से लेकर शाम तक तो यह अस्पताल एकदम सही रहता है, पर रात की काली छाया पड़ते ही सन्नाटा जैसे इसकी हर शांति को खा जाता है। वो मुर्दा घर की आत्मा इस अस्पताल को और खास कर उस छोटी इमारत को जहाँ पे वो मुर्दा घर है उसको अपना इलाका बना लेती है साहब। वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, वहाँ जाने का मतलब सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं। कुछ लोग वहाँ जाके बच गए हैं और उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक भयानक सी शक्ल वाली चुड़ैल है जो किसी को भी मार सकती है साहब। मैं तो कहूँगा साहब, आप इन सब लफड़े में मत पड़ो, फिजूल में मौत ही मिलेगी। आपसे पहले भी दो लोग आए थे यहाँ वो कुछ पता करने, पर वो पागल हो गए साहब और शमशान में जाके खुद को आग लगा लिया। एक और दूसरे बाबू थे, वो एक मशीन लेकर आए थे साहब, वो क्या नाम था भला सा, हाँ डॉक्टर गौतम, हाँ साहब कुछ ऐसा ही नाम था।
क्या उनकी उम्र 50 से 55 के करीब थी?
हाँ हाँ साहब, होलिया तो ऐसा ही था। क्यों साहब, आप जानते हैं उनको?
हाँ जानता हूँ उनको, डॉक्टर गौतम नाम है उनका, बहुत बड़े और ज्ञानी इंसान है। तो उनके साथ क्या हुआ?
साहब 4 महीने पहले उनकी उसी मुर्दा घर में मौत हो गई थी। सुबह उनकी लाश बरामद हुई तो गर्दन उल्टी थी। आप चले जाओ यहाँ से।
What?
कहानी रोगी, गाना पर कृष्णकांत के साथ।
केविन यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जिस इंसान से वो मदद मांगने गया था दरअसल वो एक रूह थी। केविन सोच में पड़ गया था कि तभी उस दिन डॉक्टर गौतम ने मुझसे सिटी हॉस्पिटल की इस रूह को दूसरी दुनिया भेजने को कहा था। केविन अब तमाम तरह के सवालों के चक्रव्यूह में था। आखिर जो रूह इतनी ज्ञानी डॉक्टर गौतम को मार सकती है वो तो उसे भी मार सकती है। उसे इस बात की भी चिंता थी कि अगर इस रूह ने उसे मार दिया तो आखिर कैसे जान पाएगा अपने घर की वो राज को। ये जो डॉक्टर गौतम ने अपने विज्ञान को समझाया था, क्या इसे सच में कोई मदद मिल पाएगी? क्या उसे सच में उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए? अब तमाम तरह के सवाल केविन के दिमाग में टटोल रहे थे। तभी केविन ने महसूस किया कि कोई साया उसके पीछे खड़ा है। बिना डर दिखाए केविन पलटा और देखने की कोशिश की, वहां कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई चीज उसके हाथों पे चल रही है। ये किसी रूह का हाथ था जो उसके हाथों के नसों के अंदर से आ रहा था। ये डरावना सा मंजर था। केविन को लगा कि वो कोई खौफनाक सपना देख रहा है। उसने उस हाथ को पकड़ने की कोशिश की। अचानक सब शांत सा हो गया। केविन को लगा कि ये सिर्फ उसका एहसास भरी था, पर जब उसने अपने हाथ और अपनी गर्दन को आईने में देखा तो वहां कुछ खरोच के निशान साफ दिख रहे थे। ये रो का हमला था। केविन ने ठान लिया कि अब वो उस हॉस्पिटल जाके ही रहेगा और पता करेगा कि आखिर क्या माजरा है। रात के सन्नाटे में केविन उस मुर्दा घर वाली छोटी बिल्डिंग के पास पहुंचा। वहां का मंजर हर लिहाज से डरावना था। केविन उस बिल्डिंग को देख के उसके अंदर दाखिल होने का सोच रहा था और तभी उसने ध्यान दिया कि एक कुत्ता लगातार छत की तरफ देख के भौंके जा रहा है। केविन ने जैसे ही ऊपर नजर डाली, उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई साया वहां से गुजरा हो। केविन ने डॉक्टर गौतम के दिए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट मीटर निकाला और जांच करने लगा कि क्या कोई एनर्जी उस मीटर को बढ़ा घटा रही है। केविन ने अपना मीटर निकाला और अंदर चला गया। वहां जाते ही मीटर बड़ी जोर से रीडिंग घटाने बढ़ाने लगा। ये साफ इशारा था रोग की मौजूदगी का। केविन ने सोचा उस साए का पीछा किया जाए जो ऊपर दिखा था, उसके लिए ऊपर जाना होगा। केविन अपने मीटर पर ध्यान देता हुआ और कुछ मंत्र पढ़ता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। उसके पास एक दो उपकरण और थे जिनसे रूह आकर्षित होती है। केविन आगे बढ़ने लगा और उसे अपने पीछे किसी के साथ चलने की आहट भी आ रही थी। केविन ऊपर जाने के लिए अभी चार सीढ़ी ही चढ़ा था, तभी लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और घसीटने लगा। ये रूह का हमला था। उसने केविन को घसीट के उस मुर्दे घर में पटक दिया जिसकी कहानियां उलझी थी। खींचता सा केविन थोड़ा चिल्लाया भी था, खुद को बचाने की कोशिश भी किया था, पर सब बेकार था। केविन थोड़ा घबराया सा उस मुर्दा घर के कमरे में था। थोड़ी देर में ही केविन ने खुद को संभाला और वहां के हालात को देखा, जहां कुछ लाशें रखी थी। उनकी गंध से केविन का सर भारी सा हो रहा था। उसका इलेक्ट्रोमीटर अभी भी उसे कुछ बढ़ी हुई रीडिंग बता रहा था। केविन ने कुछ खटखट की आवाज सुनी जो एक ड्रॉर से आ रही थी। केविन उसके तरफ बढ़ा, उसको खोला, उसमें एक लाश रखी थी। तभी केविन को अपने हाथ पे कुछ गीला सा महसूस हुआ। देखा तो हाथ पे खून था। केविन ने ऊपर छत की तरफ देखा, वहां कुछ भी नहीं। फिर जैसे ही नीचे देखा, वो लाश उस पर झपटी। केविन ने तबाक से ड्रॉर को बंद कर दिया और अपने साधन और मंत्र की शक्ति से उस रूह को चुनौती देने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
रूह, मैं जानता हूं तुम मेरे पास हो, मुझे डराने की कोशिश भी करोगी। तुम चाहती हो कि मैं यहां से चला जाऊं, पर मैं अब इस हॉस्पिटल को तुमसे मुक्त करा के रहूंगा। सामने आओ और बताओ मुझे, तुम्हें क्या चाहिए? कौन हो तुम? तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ये रही मंत्र के साथ विज्ञान की ताकत। आओ मेरे सामने आओ।
तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जिसके हथियार पे तू उछल रहा है उस बेवकूफ को भी मैंने ही मारा। अब तेरी बारी।
मार मुझे। डॉक्टर गौतम को मारना आसान हो गया था क्योंकि वो सिर्फ अपने ज्ञान पर अटके रहे, पर मैं ईश्वर को भी मानने वाला हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
छोड़ कमीने, छोड़ मुझे।
एक लंबी जद्दोजहद के बाद केविन उस रूह को भेज पाया था। उसने केविन को कमजोर कर दिया था और मरने की हालत में पहुंचा गई थी। केविन को कमजोर मान के वो उसके करीब आने की भूल कर बैठी। जहां केविन ने अपने दादाजी के दिए सिक्के का इस्तेमाल किया और उस रूह को दूसरी दुनिया में भेज दिया। ये सच में एक जिद्दी रूह थी, पर केविन के ज्ञान और उसके साहस ने इस रूह से उसे बचा लिया था। केविन को अब इन तमाम साधनों का उपयोग करके अपने घर में रहने वाली रूह पे काबू पाना था। वो काम केविन कैसे कर पाएगा, ये तो तब जान पाएंगे जब सुनेंगे कहानी रोकी। मेरे यानी कृष्णकांत के साथ सिर्फ गाना पर।
कहानी रोकी गाना पर कृष्णकांत के साथ।
क्रिएटेड बाय तारिक अहमद।